हत्यारी ने न हन्यते। मेरे पड़ोस में एक दबंग महिला का लड़कियों के बारे में दृढ़ मत था कि उन्हें हमेशा फुर्ती में रहना चाहिए। जहाँ कोई खोई खोई सी लड़की दिखाई देगी, फाटक से गोली दागती थी। क्या हत्यारिनों से सूरत बना रखी है, जा जा जाकर मुंह हाथ धो ले, कुछ कर धर। बार बार उनके मुंह से यह सुनते सुनते बचपन से मेरे मन में बैठ गया कि उदास वही औरत होती है जिसने किसी की हत्या की हो। बाकी किसी को उदास, हताश, अनमना और सुस्त होने का हक ही नहीं। थोड़ी और बड़ी हुई तो सोचने लगी वे क्या परिस्थितियाँ होती होंगी जब कोई औरत किसी जीती जागते आदमी की हत्या कर देती होगी। जन्म और जीवन देने वाली औरत और हत्या, पांव तले चीटियां पड़े, पंखे से कटकर गोरैया गिर पड़े तो भी परेशान हो जाने वाली औरत, जात जनहित में तलवार उठा ले, महिषासुर मर्दिनी बन जाए लेकिन आत्मरक्षा में जौहर ही करे, आग में खुद ही कूदे, परत दर परत यही बैठाया जा रहा था संस्कारों में। फिर विदेशी साहित्य की खिड़कियां खुली, गेटे को पढ़ा और उनकी यह पंक्ति मन में गहरे उतर गई कि दुनिया का कोई ऐसा अपराध नहीं जो करते हुए मैं अपनी कल्पना न कर पाऊं। सोते जागते महीनों तक यह पंक्ति मुझे मथती रही। बहुत सारे प्रश्न मैंने खुद से पूछे, अपने को बहुत जांचा परखा इस निकष पर कि क्या क्या अपराध मैं कर सकती हूँ। चोरी, डाका, आगजनी, मारपीट, गुंडागर्दी, हत्या। डाका डालती, मारपीट और गुंडागर्दी करती हुई तो मैं खुद को कल्पना की आंखों में बखूबी देख लेती थी। अतिशय दारिद्र की स्थिति में या बूढ़ी काकी की स्थिति में पढ़कर चोरी कर सकती हूँ, उसके लिए भी मन बना लिया था, पर हत्या के प्रसंग में मेरे अहम की सुई बार बार अटक जाती थी। विश्वास नहीं हो पाता था कि किसी को जड़ से उखाड़ फेंकना मेरे लिए संभव होगा, या किसी भी सामान्य स्त्री के लिए जिसे बचपन से घुट्टी में एक ही बात पिलाई गई है, अंकम धन आरुह्य सुप्तानाम वचनम धन किम विदग्धता। रह रहकर पिताजी का समझाया यही श्लोक याद आता जिसका सीधा साधा भावार्थ है, जिसने विश्वास किया उसे छलने में कौन सा कौशल, जो गोद में आकर सो गया उसे मार डालने में कौन सी बहादुरी। औरत की गोद तो इतनी बड़ी होती है कि सब उसमें आकर सोना ही चाहते हैं, फिर वह किसी को मारे तो कैसे। कहाँ मार पाई लेडी मैकबेथ राजा डंकन को, कटार उठाकर पास गई भी तो उसके पके हुए चितराए केश उसे अपने पिता की याद दिला गए और वह घबरा कर लौट आई। सोया था राजा, नशे में धुत थे उसके अंगरक्षक, वह मैकबेथ की अपनी अतिथिशाला थी। एक बार में डंकन का काम तमाम हो जाता तो फिर मैकबेथ हो जाता राजा, पूरे हो जाते उसके सपने। पर हत्या लेडी मैकबेथ से सधी ही नहीं और नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार होकर घुटघुट कर वह मरी। आसान नहीं हत्या, किसी भी हत्या स्त्री के लिए आसान नहीं, फिर भी स्त्री के हाथों हत्या होती है। आत्मरक्षा के क्रम या क्षणिक क्रोधावेग में ही नहीं, योजनाबद्ध ढंग से सोच समझ कर की गई हत्या के कई प्रसंग स्त्रियों के हाथ घटित हुए हैं, और हर जगह पिछले दिनों इंडिया टुडे में पति हत्या या अन्य किसी आत्मीय जन के हत्या प्रसंग में जेल गई महिला कैदियों पर विस्तृत रिपोर्ट पढ़कर और उससे भी ज़्यादा सलाखों के पीछे खड़ी उन तथाकथित हत्यारिनों की आंखें बाँच कर जो कुछ बातें मेरी समझ में आई, उनमें पहली तो यह कि एलिजाबेथन या जेकोबियन रिवेंज प्लेज या ग्रीक त्रासदी के नायक की स्थिति में स्त्रियां तभी आती हैं, कानून अपने हाथ में तभी लेती हैं जब उन्हें लगता है कि कोई बाहरी सत्ता, चाहे वह धर्म हो या ईश्वर, परिवार या समाज, सरकार या न्यायालय, उन्हें शांत सुखी जीवन की मूलभूत परिस्थितियां जुटाने में कोई मदद नहीं कर रही, कोई मदद नहीं कर रहा उनके जीवन की बुनियादी उलझने सुलझाने में, उनके मन की आग बुझाने में। रीति रिवाज, धर्म कानून सबसे आस्था डिग जाए जब दिन रात मारपीट, झगड़ा, टंटा, रोक टोक, भूख, हिकारत, गाली गलौज का आलम हो, सारे वैयक्तिक त्रासों का जिम्मेदार एक ही व्यक्ति नजर आए तो सबसे आसान उपाय सूझता है उसे रास्ते से हटा देना। ये केन प्रकारेण सीधी उंगली से घी न निकले तो टेढ़ी उंगली से ही सही। कानून में इतने ज़्यादा पेच हैं और न्याय इतनी देर से मिलता है कि कई बार लगता है क्या पता बच ही निकले, बच निकलेंगे तो जीवन कितना सुखी होगा और पकड़े गए तो भी क्या जाएगा, कौन से बहुत इज्जत चैन की जिंदगी जी रहे हैं, हो ही ले नौ छो। ज़्यादातर घरेलू टंटों के मूल में या तो पैसा होता है या फिर दाम्पत्य सुख का अभाव। घर में भावहीन यांत्रिक संभोग, नोच खसोट, मारपीट झेलती झेलती औरतें कई बार किसी अन्य पुरुष के आकर्षण पाश में बच जाती हैं और उसके बाद वैकल्पिक जीवन व्यवस्था की तलाश में होती है पति हत्या। मोहब्बत और जंग में सब जायद है, जीवन तो एक बार ही मिलता है। एक बार ही मिलता है आदमी का चोला, या मौका क्या गंवाना, यही सब सोचा जाता होगा। कई बार क्रूर पति क्रूर पिता भी होते हैं और माँ की मुक्ति में ही बच्चों को अपनी मुक्ति दिखती है। परेशान करता है आर्थिक अवलंबन का अभाव। अगर माँ के पास अपने संसाधन है या उसमें है अकेले या प्रेमी के भरोसे गृहस्थी चला देने का दमखम, तो बच्चे भी बहुत आपत्ति नहीं करते इस बात पर कि माँ बाप अलग हो लें। पर सुलह से अलग होना इतना आसान है क्या? इतना आसान है तलाक? इतनी आसान है मुक्ति? मुक्ति के महल का चोर दरवाजा ही होती है शायद पति हत्या। एक छोटा संकरा पिछला दरवाजा, एक शॉर्टकट। पूंजीभूत घृणा का आवेग लगातार कई वर्ष चुपचाप प्रताड़नाएं झेलने के बाद ही अचानक लावा बनकर फूटता है। आत्महत्या या बच्चों के साथ कुछ खाकर हमेशा के लिए सो रहने की इच्छा के पीछे भी कई बार प्रतिशोध की भावना ही होती है। होता है एक दबा ढका गुस्सा, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। पार्वती जो अग्निकुंड में कूदी या सीता धरती में समाई, एक तरह से आत्महत्या ही की उन्होंने। पिता और पति या पितृसत्तात्मक समाज के विरुद्ध प्रतिरोध ही जाहिर किया, जिसे सिल्विया प्लॉथ, एन सेक्सटन और मार्लिन मुनरो ने जाहिर किया था कि अब पछताओ, आराम से हाथ मलकर और रो मेरे नाम को, नहीं रहोगे तो पता चलेगा मेरा महत्व। हत्या के आरोप में जेल गई स्त्रियों के बच्चे प्रायः जेल में ही पलते हैं। हत्या की साजिश में बंदी बने प्रेमी युगल जेल में शादी भी करते हैं। सुधार गृहों और खुली जेलों में एक खास तरह का मोहक भगिनी भाव भी पल्लवित होता ही है। जाके पैर न फटी बिवाई, सोका जाने पीर पराई। औरतें एक दूसरे को अपने हुनर सिखाती हैं, सेवा शुश्रूषा भी करती हैं एक दूसरे की। परिस्थितिवश किसी अपने की हत्या कर देने वाली स्त्री में ममता कोमलता के सब स्रोत सूख नहीं जाते, पर आंखें सबकी पथराई हुई होती हैं। जिस तर्क से दोस्तोयेवस्की के क्राइम एंड पनिशमेंट के नायक ने समृद्ध बुढ़िया की हत्या की थी, जिस तर्क से नक्सलवादी सामंतों की हत्या करते हैं, जिस तर्क से दुर्गा, काली, लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, चांद बीवी ने तलवार उठाई थी, दुष्ट जलन के उसी तर्क से ज्यादा स्त्रियां हत्यारिणी बन जाती हैं। कुछ हत्याओं के पीछे टुच्ची स्वार्थ सिद्धि और अदम्य क्रोधाग्नि भी होती है, और उसके पीछे होता है अधैर्य। न्यायालय का रास्ता बहुत ही खर्चीला, सर्पीला, प्राय अनंत है। कौन जाए उस रास्ते? वहां तो आधे रास्ते में ही टें बोल जाएंगे। टें न अभी बोले तो बूढ़े हो जाएंगे। जिस धीरज से धूप सुखाती है ओस की बूंदे और धरती पीती है बारिश का पानी, हमने सोचा एक दूसरे से प्यार करने के बारे में और बूढ़े हो गए। कई ऐसे हैं जो एक बार किसी प्रिय का सिर सहलाने का अवसर ढूंढते ढूंढते एक नन्हा सा स्वप्नांकुर मन में दबाए दबाए सचमुच ही बूढ़े हो गए। किसी की हत्या तो क्या, त्याग, बलिदान आदि बड़े बड़े आदर्श साधते हुए किसी चिड़िया का भी दिल उन्होंने कभी न दुखाया। क्या वे कायर थे या बेवकूफ? क्या उनका प्रेम अभी कम था? नहीं, वे सब छोटे मोटे योगी थे। योग या उदात्तीकरण या बृहत्तर विवेक सबके वश का नहीं होता, पर दुख कातरता या पर काया प्रवेश के लिए जितनी कल्पनाशीलता चाहिए वह सबके पास नहीं होती। सामान्य जन को हत्या की तकलीफ दे और आत्मपीड़क स्थितियों से बचाने का एक ही रास्ता है। संपत्ति के बंटवारे और विवाह मुक्ति की प्रक्रिया अधिकाधिक आसान हो और ज्यादातर विवाह प्रेम विवाह हो। बिना प्रेम के विवाह का कोई अर्थ नहीं, जैसे बिना आर्थिक स्वतंत्रता के स्वतंत्रता का कोई खास मतलब नहीं। इनके अभाव में हत्या या आत्महत्या की त्रासद स्थितियां बनती हैं। इंडिया टुडे के मुख्य पत्र पर जो तस्वीर है उसमें हत्या के आरोप में जेल गई स्त्रियों के जेल में पल रहे बच्चे जेल की सलाखों के भीतर मस्ती में मुस्कुराते खड़े हैं, मानो जीवन का कितना बड़ा आयोजन हो गया है कि उनकी तस्वीर छपेगी। कैसी विडंबनात्मक स्थिति है यह? क्या कहीं न कहीं हम सब इस रूधे हुए बचपन और कुंठित यौवन श्रृंखला के जिम्मेदार नहीं? इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था के निराकरण के लिए हम क्या कर रहे हैं सिवा टेसुए बहाने के? बिन घर ने घर भूत का डेरा, घर किसका घर? सर्वोच्च न्यायालय ने अभी एक याचिका दायर हुई है। गुजरात का एक व्यक्ति अपनी पत्नी को इसलिए तलाक देने पर आमादा है कि वह भुज में अपने वृद्ध असहाय माँ बाप के पास रहकर नौकरी करती है, उसके घर रहने नहीं आती, गाहे बगाहे मिलना हो पाता है। उच्च न्यायालय को तलाक की यह वजह वाजिब लगी। इस पर आहत होकर उस स्त्री ने सर्वोच्च न्यायालय में यह प्रश्न उठाया कि विवाह का घर वधु का घर होता है कि वर का। बहस अभी चल रही है। लाखों लाख औरतें आश्चर्य विवल आंखों से देख रही हैं उधर की यह कैसा प्रश्न उठा। विवाह का घर चाहे जो भी हो, पर लगातार विस्थापित की मनोदशा यानी क्लास की उठल्लूपन झेलने वाला स्त्री समुदाय तो अक्सर न घर का होता है न घाट का। माँ बाप के घर यही सुनते हुए कान पक जाते हैं कि पराई अमानत हो, आन गांव जाना है, मेहमान हो 4 दिन की, यानी हमारा घर तो तुम्हारी सराय है, पड़ाव है, छोटी सी प्रशिक्षण स्थली है। ससुराल में जरा भी गलती हो, रोटी चाँद के मुंह से टेढ़ी हो जाए या टेबल पर किताबें बिखरी रह जाए तो काट खाने को दौड़ते हैं लोग कि कैसी कुलक्षणी है, गृहस्थी ठीक से भी नहीं चल सकती, थू कैसे घर से आई है। कभी कभी बात डांट मार गाली गलौज तक पहुंच जाती है और त्रिशंकु की स्थिति में डोलती स्त्री समझ भी नहीं पाती कि जाए तो जाए कहाँ। घर निकाला देश निकाला दिखता है क्योंकि घर ही अब तक उसका देश रहा है। अमीर खुसरो पुरुष थे, तभी तो इतनी आसानी से कह गए चल खुसरो घर आपने रहन भई चहु देश। जहाँ सारा जीवन अंधेरा हो जाए, हर बत्ती गुल हो जाए, कोई चिराग में असर न हो, वहाँ भी रहना तो है। सड़क पर खड़ा कर दिया जाए, निकाल देने की धमकी दी जाए तो भी अपनी घायल खुदी का झूला झंडा समेटकर खुद को आवाज़ देने का आत्मविश्वास नहीं जगता। चल खुश रहो घर आपने, समझ में ही नहीं आता कि आखिर कौन सा घर है अपना, जहाँ चले। पिट पिट कर औरतें घर से निकाल भी जाती हैं तो कहाँ है। मंदिर या गुरुद्वारे की सीढ़ियों, पार्कों, बस स्टॉप की बेंचों, डाकघर के चौकटों पर बैठी, टेलीफोन बूथों की क्यू में खड़ी खड़ी मन ही मन गुनती हैं कुछ कुछ, और थक हार कर जब फिर लौट आती हैं वापस तो यही सुनने को मिलता है, क्यों खाली बाहर की हवा, निकल गई हैं कड़ी, लिवा ले गए भाई बाप, ले आई बाप की प्रॉपर्टी का हिस्सा, बना लिया हवा महल। औरतें नौकरी नहीं करती तब तो बाहर की दुनिया से और भी ज़्यादा डर लगता है, और माँ बाप का यही दर्शन बार बार मन में कौध होता है कि हजार भेड़ियों के बीच रहने से तो अच्छा है एक भेड़िए के साथ जिंदगी काट लेना। नौकरी करें तो भी घर चलाने में सारे पैसे फूक जाते हैं, कभी इतने पैसे नहीं जुट पाते कि स्त्री अपने लिए अपना वह निजी कोना बना सके जिसे वर्जीनिया वुल्फ अ रूम ऑफ वंस ओन कहती हैं। वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल भी बच्चों वाली औरतों को पनाह नहीं देते और इस तरह शेयर्ड स्पेस स्त्री की नियति बन जाती है। एक अदृश्य कैंप है हर घर में जिसमें औरतें जीती हैं। चार दीवारियों के पक्केपन के बीच एक कच्चे तंबू का यह जीवन उन्हें लगातार एक अभ्यागत की स्थिति में डाले रहता है, क्षमा प्रार्थी बनाए रखता है अपने पूरे अस्तित्व के प्रति। नैहर से कोई आ गया तो क्षमा प्रार्थी, दोस्त सहेली परिजन पुरजन फोन भी लंबा कर गए तो क्षमा प्रार्थी, अलगनी पर पसरी साड़ी या मेज पर किताबें स्पेस ज़्यादा ले गई तो क्षमा प्रार्थी, पूरा जीवन जैसे एक लंबी क्षमा याचना हो। इस अभ्यागत वाले भाव से निकलने के रास्ते दो ही दिखाई देते हैं, एक तो यह कि माँ बाप के घर बेटी का भी कम से कम एक कमरा उसके अपने नाम का हो जहाँ संकट में तो वह शरण ले सके, बाकी समय भाई आदि उसका उपयोग कर सकते हैं, कौन बहन रोकेगी। दूसरा यह कि वर्किंग वीमेंस के साथ नॉन वर्किंग वीमेंस हॉस्टल भी ज़्यादा से ज़्यादा खोलें जहाँ काम का प्रशिक्षण देकर अपने पैरों पर खड़ा करने का प्रावधान हो और बच्चों को साथ रखने की छूट भी। ये विकल्प सामने होंगे तो बात बात की गुर्राहट और घर से निकाल देने की धमकी अपने आप खत्म हो जाएगी। जो पुरुष अपने पौरुष का उत्कर्ष गेट आउट चिल्लाने गाली गलौज करने या हाथ पांव चलाने में प्रतिच्छायाई समझता है, दरअसल चाहता वह भी नहीं कि अब तक सिर झुकाकर गेट आउट सहती चले जाने वाली सचमुच ही पीठ दिखाती बाहर निकल जाए। उस दृश्य की कल्पना कीजिए कि सुना गेट आउट और सचमुच ही गठरी उठाकर खुद को पुकारा चल खुश रहो घर आपने, है कोई घर जो प्रतीक्षा कर रहा है। यह एक बड़ा आश्वासन है, प्रतीक्षा खुद एक घर है, विकल्प खुद एक घर है। स्वर्ग की कल्पना इसलिए सबके मन में जीती है कि स्वर्ग भी एक घर है, जीवन दहाड़ कर कहे गेट आउट तो क्या है, जाने को एक घर यह सोच भी काफी है। अधर में लटकने की स्थिति सिर्फ फकीरों से सदती है, पर चाहते तो वे भी हैं कहीं पहुंचना। परदेसी पिया का त्रास, साल में कभी एक बार घर लौटने वाले कमाऊ पिया का वियोग, औरतों ने तो रो भी सुर कर झेल भी लिया। अब जब औरतें अलग रहकर नौकरी कर रही हैं और दूर से ही सारे दायित्व तो निभा रही हैं, ये हाय हाय भला क्यों मची है। रिमोट कंट्रोल शादियां आधुनिक जीवन का एक बड़ा सच तो है ही, इन्हें स्वीकार करने का जिगर रखना तो चाहिए। विश्वास एक खुद एक घर है, एक नन्ही सी झोपड़ी, जंगल की राह भूलने वाले जानते हैं जंगल की झोपड़ी में टिमकता एक चिराग जीवन की दिशा बदल सकता है। बलात् का पशुबल और विश्वास का संकट। न्यायविद अरविंद जैन की पुस्तक देखी, नाम था बचपन से बलात्कार। बलात्कार के पास बचपन जो बैठा है इस किताब की काली जिल्द पर वैसे ही बैठा है जैसे गणगौर युद्ध के दौरान इसे टाइम बम से सटकर बच्चों के फुटबॉल जा बैठे। इराक युद्ध के दौरान ऐसा हुआ भी था। सतीश जैकब की युद्ध डायरी, सतीश जैकब फ्रॉम होटल पैलेस्टीन बगदाद में 20 मार्च 2003 से लेकर 15 अप्रैल 2003 तक के बगदाद के ध्वंस की जो आंखों देखी दास्तान दर्ज है, उसके अनुसार युद्ध जब लंबा खींचा, दाल भात रोटी का कौर हो गया युद्ध का आतंक, तो बमबारी के तमाम आशंकाओं के बीच भी बच्चों के फुटबॉल मैच की तैयारी चलने लगी। यही होती है जिजीवशा, यही होता है गजघंट न्याय। इस पुस्तक में बचपन के बगल में बलात्कार की प्लेसमेंट एक शॉक तकनीक के तहत हुई है। एक तरह की संजीदा शॉक तकनीक है यह। बचपन को स्मृतियों का बैंक बैलेंस कहते हैं। कागज की कश्ती से बारिश के पानी से जोड़ते हैं इसे। ब्लेक वर्ड्सवर्थ से लेकर अब तक के कितने रोमानी आख्यान बुने गए हैं उसके इर्द गिर्द। पर बचपन का एक पक्ष और भी है। डिकेंस को ओलिवर ट्विस्ट, डेविड कॉपरफील्ड, डॉम्बी एंड सन, हार्ड टाइम्स और गोल्डिंग के लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में विध्वंसित बचपन के आख्यान उसके समानांतर चलते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि विध्वंसित बचपन के सारे आख्यान बेटों के आख्यान ही हैं। बेटियों के विध्वंस के आख्यान बेटियों ने ही लिखे हैं या शेक्सपियर, टॉल्स्टॉय आदि एकाद पुरुषों ने। रेप ऑफ ल्यूक्रिस नाम की अपनी प्रसिद्ध कविता में बलात्कारी टारक्विन की कामना को ट्रस्टलेस विंग्स ऑफ फॉल्स डिजायर कहते हैं शेक्सपियर। झूठी आकांक्षा के अविश्वसनीय पंखों पर सवार टारक्विन ल्यूक्रिस के महल जाता है और लौटता है तो अपराध बोध से छलने। फॉल ऑफ ट्रॉय में ट्रॉय नगरी के विध्वंस का चित्र फटी-फटी आंखों से निहारते हुए ल्यूक्रिस बैठी है। उसका इस तरह बैठना एक भूख सी पैदा करता है उसके भीतर। अब के टाइक्विंसों को पछतावे की यह हूक भी तबाह नहीं करती। इसके तमाम प्रमाण इस किताब में दर्ज है। बलात्कार शब्द विन्यास में ही एक चित्कार छुपा है। शब्द है बलात्कार, पशुबल यानी पशुबल का ऐसा विस्तार जिसमें चित्कार छुपा हो किसी का। सिसकी नहीं, चित्कार। चित्कार में प्रतिकार के भी एक अंतर ध्वनि है जो महत्वपूर्ण है। बलात्कार पुंसत्व का चोर दरवाजा है। तीन चार तरह के बलात्कार संभव है। एक तो जो मांस फ्रेंजी का हिस्सा होते हैं, युद्ध और दंगों के दौरान दुश्मन की औरतों को उनकी औकात बता देने का जरिया, जहां पुरुषत्व का दुरुपयोग एक कोड़े की तरह किया जाता है। दूसरा, बीमार मानसिकता के अजनबियों द्वारा पार्श्विक आवेग का रिलीज टुच्ची आखेटक दृष्टि से परिचालित, जैसा कि कुछ वर्ष पहले दिल्ली में फिल्मोत्सव के दौरान हुआ। तीसरी और सबसे प्रचलित कोटि रिश्तेदारों, पड़ोसियों, अन्य परिचितों द्वारा लंबी चौड़ी योजना के तहत किए गए बलात्कारों की है। अरविंद जी ने लगा ज्यादातर इसी तरह के केस उठाए हैं, क्योंकि सबसे विडंबनापूर्ण स्थिति यही होती है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए। पहले दोनों कोटि के बलात्कार एक तरह की दुर्घटना है, पर बाद वाली कोटि में तो मानवता से विश्वास ही टूट जाता है। विश्वास जो दुनिया के सबसे कोमल और सबसे सुंदर चीज है। पतियों के बलात्कार की एक अलग श्रेणी है। एक लात मारकर दूसरे ही क्षण पास खींच लेने की अगर धत्त कोशिश, एक निशंस कोशिश तो है ही, जिसके लिए अब सजा भी मुकर्रर है। चूमा चाटी शब्द चलता है, इसको चूमा चाटा कहिए। अंतःपुरम में इसकी गूंज हरदम जिंदाबाद रहती है। जहां प्रेम होता है वहां समर्पण जैसे बड़े भाव के एक प्रतीक के रूप में दैहिक संस्पर्श एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में जीवन की आह्लादकारी लय बन जाता है, वरना देह से देह लड़ जाने का क्या मतलब। लोक जीवन में अंगों के कुछ एक अमानवीय झटकों को इज्जत जाना या इज्जत लुट जाना कहते हैं, लेकिन इस मुहावरे पर मुझको गहरी आपत्ति है। इज्जत कैसी बड़ी चीज के साथ, इज्जत जैसी बड़ी चीज के साथ अंगों के अमानवीय घर्षण का हादसा क्यों जोड़ा जाए भला। देह पर कीचड़ पड़ जाने से उसकी इज्जत नहीं जाती, तो फिर किस तर्क से एक ताकतवर पशु के संसर्ग से उसकी इज्जत चली जाएगी। यौन शोषण के शिकार लड़कियों के सामने सरस्वती बहुत बड़ा आदर्श है। सरस्वती ब्रह्मा की पुत्री थी, पर ब्रह्मा ने उनसे समागम किया। इंसेस्ट का यह आदिकालीन उदाहरण है। देह मन सब टूटा होगा देवी सरस्वती का, फिर भी वह अपने रास्ते बढ़ती रही। एक प्रतिष्ठणाकारी हादसे से किसी की शुचिता भंग होती है या हो सकती है, यह बात ही दिमाग से निकाल देनी चाहिए। देवी सरस्वती का पूरा चरित्र इस बात का प्रमाण है। आंकड़ों से भी कविता बुनी जा सकती है। फैक्ट इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, वास्तविक केस स्टडीज के माध्यम से यह बात शब्दशः प्रमाणित की है अरविंद जी ने। जीवन का कच्चा चिट्ठा खोला है। हर घर में पहले एक देवदार की पेटी हुआ करती थी, उसमें उस घर के कच्चे चिट्ठे पड़े होते थे एक तरफ, और दूसरी ओर पुराने बर्तन, कपड़े, टूटे या गिरवी पड़े बर्तन, गहने महीना होकर फट जाते थे, महीन होकर फट जाते थे कागज, एक दूसरे से चिपक दूसरा चिपक जाता, जैसे मुसीबत की मारी हुई औरतें बच्चे एक झुंड में चिपक कर बैठे रहते हैं, जैसे हमारी अलग अलग वर्गीय, धार्मिक, जातिगत, नस्लगत अस्मिताएं एक दूसरे से चिपकी पड़ी होती हैं। कच्चे चिट्ठों का अध्ययन विश्लेषण इतना आसान भी नहीं होता। बलात्कार विषयक फैसलों की भाषा और मंतव्यों पर पितृसत्तात्मक पूर्वग्रह किस कदर हावी है। न्यायविद कहलाने वाले सफेदपोश पितृसत्तात्मकों के मन में स्त्री देह को लेकर कितने दुराग्रह पल रहे हैं। पितृसत्तात्मकता ऊंची हील वाले हंटर बूट पाने औरतों का देह मन भविष्य कैसे निशंक भाव से रौंदे जाते हैं। बड़ी बेबाकी से ये तथ्य उजागर हुए हैं। यहाँ कुछ पुरुषों ने मर्द जाति का बड़ा भला किया है, और उससे भी ज़्यादा भला किया है कानूनी बिरादरी का। कचहरी और अस्पताल, इन दोनों के बारे में आम धारणा इतनी विकट है कि सहज विश्वास नहीं होता कि इनमें कोई ऐसा भी हो सकता है। कचहरी और अस्पताल लोक जीवन की दो भूतही हवेलियाँ हैं। एक खौफ सा बैठा रहता है आदमी के मन में इन संस्थानों के प्रति। कानून और कचहरी को लेकर बहुत सारी कहानियां और कहावतें जो हमारी तरफ प्रचलित हैं, उनमें सिर्फ एक उद्धृत करती हूँ, पिछले पृष्ठों में अन्यत्र भी उल्लेख किया है। कहावत है, एक पजामा दो भाई, पारा पारी कचहरी जाई। गरीबी के इंतहा और कोड़ में खाज की तरह कचहरी के चक्कर ले देकर घर में एक ही पाजामा बचा है बाहर जाने लायक, और घर के दो भाई बारी बारी से वही पहनकर जा रहे हैं कचहरी, मगर जा जरूर रहे हैं। कचहरी ने यह हालत कर दी है, पर कचहरी जाना जरूर है। कानूनदा और कानूनची दोनों खतरनाक माने जाते हैं। कोई कानूनदा दोस्त भी हो सकता है। कानून के कुख्यात अंधेपन के ऊपर इसकी एक तीसरी आंख भी हो सकती है। वह तीसरी आंख हमेशा हम पेशा न्यायविदों को मर्दवादी भाषा और तीवर पर अंगारे बरसा सकती है। परकाया प्रवेश की मिसाल कायम करती हुई परेशान हाल औरतों के लिए खून के आंसू रो सकती है। यह अंतर्दृष्टि विकसित करने में अरविंद जी की किताबों की बड़ी भूमिका रही है। अंत में एक बात मैं और कहना चाहूँगी, दबी जबान इसलिए कि यह बात दोस्तों को निवेदित है। नई स्त्री की गुइयाँ बन सकने लायक हमदर्द दोस्तों को, स्त्री की देह युग युगांतर से उसके शोषण का साइट रही है। मारपीट, घसीटा घसीटी, गाली गलौच, नोस खसोट, भावहीन यांत्रिक संभोग, विवाह के भीतर या उसके बाहर का सूक्ष्म या स्थूल यौन शोषण, कभी रिश्तेदार, कभी गॉडफादर के रूप में, कभी सहकर्मी या अन्य हितैषी के रूप में भी। इसलिए देह के प्रश्न पर हर स्त्री सशंक रहती है। ठीक से देखा जाए तो हर स्त्री शरीर एक हरा घाव है। इसे छूने के पहले हजार बार सोचिए कि यह स्पर्श का रिश्ता जो आप बनाना चाह रहे हैं निभा भी पाएंगे या क्या। यदि आप जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, कहीं पहले से प्रतिश्रुत हैं, तो कांटों में मत घसीटिए उसे। और नयन के हजार रास्ते हैं, सब्लिमेशन उतना मुश्किल भी नहीं। हर स्पर्श जीवन भर की प्रतिबद्धता मांगता है। बाजीवे कातिल में इतना जोर भी वो भी अगर के दो चार को निभा ले तो भी कातलाना बाजू छाती पर बांध कर ही रखिए विवेकानंद वगैरह की मुद्रा में। स्लो पॉइजनिंग की तरह बलात्कार भी स्लो पेस पर चल सकता है, जैसे कोई धारावाहिक नाटक चलता है। कई पढ़े लिखे सुविधा संपन्न लोग इसे मुलाकात दर मुलाकात आहिस्ता आहिस्ता जारी रख सकते हैं। बड़े गोपन और सूक्ष्म भाव से उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ने की पूरी प्रक्रिया का एक भयावह प्रक्रिया है। भयावह इसलिए कि अक्सर यह उसकी ओर से घटित होता है जो एक दोस्त के रूप में आपको अच्छा लगता है। देह जैसे बड़े यथार्थ के साथ आप उसकी जीवन में शामिल नहीं होना चाहती, पर यह भी नहीं चाहती कि उसकी एक बचकाना हरकत के कारण पूरी दोस्ती खटाई में पड़ जाए। झटके से उठकर मामला पुलिस स्टेशन तक ले जाना बनता भी नहीं। मन में रह रहकर यह द्वंद भी जगता है कि बात खुल गई तो परम पुरुष का घर बर्बाद हो जाएगा, पत्नी बच्चे हर एक जाएंगे, नौकरी पर भी मन आ सकती है। अक्सर ऐसे कठिन और नाजुक मोड़ पर सरलाएं यह संकल्प लेती हैं कि गांधीवादी तरीके से वे आसक्त पुरुष का हृदय परिवर्तन घटित करेंगे, उनमें ज्ञान की ज्योत जलाएंगी, उन्हें सही रास्ते पर लाएंगी। पर कामदग्ध व्यक्ति जो क्रोध दग्ध दुर्वासा से भी ज्यादा वज्रांध होता है, यह बात शुरू शुरू में अक्सर समझ में नहीं आती और उंगली जलाकर ही स्त्री समझ पाती है कि क्रोधातुर कामातुर का उपचार इतना आसान नहीं। तब तक मामला इतना उलझ चुका होता है कि लात या हवा लात कुछ भी असर नहीं करता। सेंसिटाइज करने की पूरी प्रक्रिया दुरू होती है, फिर जगाया तो सोए हुए को जाता है। मोहांध को जगाना मुश्किल है, मोहांध व्यक्ति तंद्रा में होता है। समझ रहा हूं, मगर क्या समझ रहा हूं मैं? किसी का धर्म संकट समझना मानवता की पहली शर्त है। शारीरिक संपर्क के लिए असहमति प्रस्तावकर्ता का अपमान नहीं है। शारीरिक तादात्म्य का अभाव मानसिक तादात्म्य की बाधा बन ही जाए कोई जरूरी नहीं है। लगाए न लगे कि अपनी मजबूरियां हैं, बुझाए न बने का अर्थ यह भी नहीं कि जबरदस्ती की लुत्ती लगाते चलिए, जिद पर तुल जाइए, मानसिक दबाव पैदा करिए, पीछे ही पड़ जाइए। पीछे पड़ जाने वाले औरतों की ईगो पर अच्छा मरहम होते हैं, पर दया या ऊब के वशीभूत उनको जो मिलता है वह उनके स्वाभिमान को कैसे गवारा होता है भला, मेरी समझ में नहीं आता। गणित के शिक्षक 3P की मास्टरी करने को कहते थे पेशेंस, परसिवरेंस और प्रैक्टिस, यानी धीरज, अध्यवसाय, अभ्यास। प्रेम के खिलाड़ी भी ये 3P साधना चाहते हैं, पर बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख वाली कहावत स्त्री देह के संदर्भ में जितनी सच है शायद किसी संदर्भ में न हो। न भीख में, न लूट मार में यह मोती यूं ही मिल जाता है, मिलना होता है तो। अपनी ओर से प्रस्तुति या मानसिक तादात्म्य के बाद ही होता है, और मानसिक तादात्म्य की सबसे बड़ी बाधा है जो जबरदस्ती या प्रेशर तकनीक। घरेलू हिंसा एक्ट 1, 2, 3 एक्ट नाटकों में होते हैं और कानून के भी। यह मैं कैसे कहूं कि कानून भी नाटक है, हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और। बस इतना याद दिलाना पर्याप्त होगा कि हाथी से जुड़ी दो और मजेदार कहावतें जनमानस में रची बसी हैं, हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। और ये तो खैर है ही कि बातें हाथी पाइयां बातें हाथी पाऊं। कुष्ठक में राजा के आगे चिकनी चुपड़ी हाँको और पुरस्कार में हाथी पाओ, ज्यादा हैंकड़ी दिखाओगे तो हाथी के पांव तले रौंदवा देगा वही राजा। कुष्ठक पर देश के चोर सिपाही राजा मंत्री हो या घर गृहस्थी के सैयां राजा, खतरनाक होने नहीं चाहिए लेकिन होते हैं। हिंसा वह हिनहिनाती सी घोड़ी है जिसके बिना राज के वैभव पूरा नहीं होता। राजा की सवारी है हिंसा, राजदंड कोड़े का सगा भाई है कि मौसेरा भाई, यह अभी मैंने पता नहीं किया। बाइबिल तो सिर्फ बच्चों के लिए कहती है स्पेयर द रॉड स्पॉयल द चाइल्ड, पर पितृसत्ता कहती है घोर गवार शुद्र पशुनारी कि पीड़ते रहने में ही उनका कल्याण है। हिंसा भी तरह तरह की किस्म किस्म की होती है। पति पत्नी के जोड़ों के समानांतर और भी कई जोड़े घर में पलते हैं। नोवा ने अपने जहाज में दुनिया के सब प्रजातियों का एक एक जोड़ा रख छोड़ा था ना, तो हिंसा के कुछ पेटेंट प्रकार भी जोड़ों में ही हर घर के भीतर रहते हैं। डांटना, दबारना, मारपीट, गाली गलौज, अठियाना, कोहिनियाना, लतियाना, जुतियाना, मटियाना, पटियाना आदि जोड़े हिंसा की एक प्रजाति हैं, तो यौन हिंसा उसकी दूसरी प्रजाति। यौन हिंसा स्लो मोशन में धारावाहिक रूप में भी चल सकती है, और खट खटाखट पटक झटक धगत 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 ज्वाला रूप में भी। दोनों तरह की हिंसाओं की खातिर एक ही तरह के फायर ब्रिगेड की व्यवस्था सरकार ने की है। निश्चय ही काबिले तारीफ है यह व्यवस्था। किसी भी तरह के अंतरंग रिश्ते में जब तानातानी चलने लगती है, साम दाम दंड भेद की चार अवस्थाएं राम लखन भरत शत्रुघ्न भाव से प्रकट होती हैं। समझाने, रोने बिसुराने, फरियाद करने के बाद धमकी, फिर प्रत्याक्रमण और अंततः टाटा गुड बाय। इसकी सेवा कोई करे भी क्या? बैंक बैलेंस की तरह धीरज सहिष्णुता का भी कोष कोई अक्षय कोष तो होता नहीं। पर विवाह विच्छेद के बहुत सारे केसों के अध्ययन मनन के पश्चात अक्सर आदमी इस निष्कर्ष पर तो पहुंचता ही है कि यदि बाल बच्चे हो चुके हों तो तानातानी में घर भरसक नहीं छोड़ना चाहिए। यदि रण क्षेत्र भी हो तो घर तो लड़ाई का मैदान छोड़कर क्या भागना। एक ही छत के नीचे अच्छे पड़ोसियों की तरह रहना कठिन है, असंभव नहीं। यदि सरकार सचमुच एक फोन कॉल पर अपने कारिंदे भेजकर मरखंड शराबी व्यभिचारी पति को जेल की हवा खिला देती है और कुछ वर्षों की हवाखोरी उसमें पत्नी को भी ब्रीदिंग स्पेस देने का शौर विकसित कर देती है तो क्या कहने। उनको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को गाली भी। ख्याल अच्छा है कि भूखा भेड़िया बनकर पति जेल में नहीं लौटेगा, जेल से नहीं लौटेगा। हृदय परिवर्तन और पश्चाताप जैसी सुनच रैया वीड़ा मधुर मधुर कुछ बोल शैली में मीठे गीत गाएगी और राजा रानी हमेशा हमेशा के लिए चैन की बंसी बजाते एक ही घर में रह लेंगे। घर जिसके बनाने संवारने में पत्नी का श्रम, उसकी कल्पना और उसकी पीएफ और वेतन तथा पितृगृह से हिस्से में मिली उसकी संपत्ति का हिस्सा भी शामिल होता है। बावजूद इसके शटअप गेट आउट आदि औपनिवेशिक मटरमालाएं उस पर वारते हुए बार बार इस तर्क पर उससे धौल धप्पा किया जाता रहा अब तक कि पीट दिया तो क्या हुआ, छोटी है मुझसे। भय भिन्न हो ही न प्रीति के तर्क से चलें तो अब ये दिन दूर नहीं कि घरों में जब होगा प्रीति कला होगा, उससे अधिक कुछ नहीं। एक तरह से स्त्री की अस्मिता ही चुनौती की मुद्रा में कहती दिखाई देती है। मैं एक दरवाज़ा थी, मुझे जितना पीटा गया मैं उतना खुलती गई, और अब इस खुले हुए दरवाजे से पूरी कायनात बेदस्तक भीतर चली आई है। खुला हुआ आकाश, नदियाँ और सागर, टूटे हुए तारे, दुनिया के सारे वंचित अनादृत उपेक्षित जन जिनके ऊपर कई स्त्रियों ने अपना आंचल उढ़ा रखा है, क्योंकि उसका घर साधारण घर नहीं। कोई भी थका हारा भूखा प्यासा उसमें अपने ही घर की ममता समता पा सकता है। अपना क्षितिज बढ़ाना ही समस्या का सही निराकरण है, और गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा यह घर सिर्फ रिश्तेदारों से नहीं बनता। सारे वंचित अनादृत परिजन पुरिजन बिन दीवारों के जिस घर का हिस्सा है, नई स्त्री उनके प्रति भी अपने दायित्व निभाना चाहती है, और उसमें बाधा बनना भी एक हिंसा ही है जिसका निराकरण कानून उतना ही कर सकता है जितना आपसी समझदारी कर सकती है। कानून नून ही है, दाल भात नहीं। दाल भात प्रेम और विश्वास ही माना जाए। घरेलू हिंसा, बिल 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 बिल। बचपन में हमें बिल्लियां भगाया करते थे, बिल 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 बिल्ली बिल। यह बिल बिल गांव का बिल था या बिल्ली का अर्धांश बिल, अब यह कहना मुश्किल है। एक चचेरी भाभी थी जिनसे हमने यह महाशब्दांश सीखा था, बिल बिल यानी भाग रे बिल्ली, चिल बिल्ली तू भाग, तेरे भाग में कोई छींका नहीं टूटने वाला, सारी दूध मलाई हमारे हिस्से छोड़ तू चलती बन। इतनी ज़्यादा क्रीमी लेयर्स की बात सुनकर बिल्लियाँ नए सिरे से याद आती हैं। 70 चूहे खाकर हज पर जाने वाली बिल्ली, कैटवाक पर निकली बिल्ली, बिल्लियों के भी उतने प्रकार हैं जितने बिलों के। एक बिल अभी यह आया है, घरेलू हिंसा बिल। यह माना जा रहा है कि घरेलू हिंसा इसके एक चपट्टे से चूहे के बिल में घुसती नजर आई। जी कर रहा है पौराणिक कथाओं से शब्द उधार लेकर कहूँ तथास्तु, और आँख मूंद कर सोचने बैठती हूँ तो एक साथ कई दृश्य स्मृति में तैर जाते हैं। कई विडंबनाएं आँख मलती हुई उठती हैं। पत्नी जो खुद कामकाज से हैरान परेशान इधर से उधर करती रही, सब गालियाँ धौल धप्पे लत्तम जुत्तम इस भाव से खा लेती है जैसे मुँह फुलाकर इमली पीने वाले गोलगप्पे खाए जाते हैं, तब तो ठीक, वरना मारते मारते सिर ही फोड़ दिया जाता था और उसके बाद सिसक सिसक कर उसकी मरहम पट्टी भी की जाती थी कि चुप रहो चुप रहो, बात कमरे के बाहर न जाए। मुझे खुद ऑफिस में इतने तनाव रहते हैं, मेरे भी माँ बाप बीमार हैं, भाइयों के घर टूट रहे हैं, बहनों की शादी करनी, ऐसे में पत्नी करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए, किस बिल में? यौन हिंसा की वारदातें तो खैर जाने ही दीजिए अनगिनत होती हैं। बहन, बेटी, बेटी की दोस्त, किसी उम्र की हो बस स्त्री होनी चाहिए। एक झटके में बलात्कार नहीं भी हो जाता तो स्लो पेस में चलता रहता है, या कम से कम कोशिश जरूर बरकरार रहती है। एक तरह से यह फी ही है जो घर में रहने देने या किसी और व्यवहारिक मदद की एवज में लड़कियां या औरतों से वसूली जाती है। और चूंकि परिचिता किसी न किसी प्रकट परोक्ष से जुड़ी रहती है, मारे लिहाज के कुछ नहीं कर पाती, शिकायत भी नहीं, सिर्फ इस चिंता से कि उन्हें बदनाम करने या सजा दिलाने से बेहतर परिवार का सुख चैन जाता रहेगा। उनके बीवी बच्चों का क्या होगा? बीवी बच्चों से भी किसी न किसी तरह का संबंध रहता ही है। उनके प्रति उमड़ी ममता में भी लड़कियां चुपचाप सब झेल जाती हैं। वैयक्तिक सुधार आंदोलन उन्हें कहीं नहीं ले जाते, क्योंकि काम अदग्ध व्यक्ति कुछ भी नहीं सुनता। फिर भी प्रयास चलते रहते हैं, बर्बाद हो जाती है ऊर्जा, वक्त, आत्मदीप्ति। कानून पारित करने के साथ लड़कियों में यह चेतना जगाना जरूरी है कि वैयक्तिक प्रयासों में सुधरने वाली चीज पाशविकता नहीं है। साम दाम के बाद दंड भेद आजमाना ही पड़ता है, फूलों पर चाबुक जैसा। बाग बगीचों में बैठे हुए जोड़ों पर लाठीचार्ज ऐसा ही है जैसे फूलों पर पड़ी हुई संभावित धूल चाबुक में बंधी हुई झाड़न से झाड़ना, सटाक सटाक। आतंक का साम्राज्य इससे तो कायम होगा, लेकिन संदेश क्या जाएगा? यही कि हिंसा जायज है पर प्रेम नाजायज। प्रकृति की छांव प्रेम ही ढूंढता है, और प्रेम पर डंडे बरसाना एक तरह की डायरपंथी मानसिकता कृत्य है, एक नया जलिया वाला बाग कांड। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाई, यह तो सच है। प्रेम किसी भी तानाशाही को नहीं मानता, किसी आदेश पर न प्रेम हुआ है न मिटा है। बड़े प्रेम में टंग जाते हैं ब्रह्मचर्य के कड़े नियम, उस प्रेम के पीछे चिड़ियां गर्भवती हो जाती है। लाख गर्दनियां दे पुलिस, सूरी तैयार कर दे कोई हाकिम, मगर कहीं कोई प्रत्यभिज्ञ सी अगर जगी है, दो जुड़वा आत्माओं ने एक दूसरे को पहचाना है, तो यह पहचान मिटा पाना आसान नहीं। मछली अंगूठी जो निगल भी गई तो कटेगी। दुर्वासा को गुस्सा आ भी गया तो वह पिघलेगा, अगर नहीं भी पिघला तो श्राप अपने रास्ते, प्रियजन अपने रास्ते। माँ बाप, शिक्षक, पुलिस, पड़ोसी और नैतिकता के ठेकेदार लाठी लेकर जो किशोरों के पीछे पड़े रहते हैं, तो इस डर से कि सीमाएं टूट न जाए। यौन शुचिता एक बड़ी चीज है भी, दाल भात का साधारण कौर रति क्रिया को बना दे तो प्रेम का रहस्य रोमांच बहुत हद तक विलुप्त हो जाए। प्रतिबद्ध प्रेम आनंद का सागर है। कैजुअल सेक्स उस ठंडे पिए की एक घूंट, जिसे आमिर खान की शैली में सर उठाकर पिया तो जा सकता है, ताजा तरीन भी महसूस किया जा सकता है, लेकिन बस कुछ देर की खातिर। क्षणांश में रक्त का शर्करा मात्रांक नीचे खिसकेगा और प्याज ज्यों की त्यों, दिल मांगे मोर की चपेट में। जैसे ओट्स चाटने से प्यास नहीं बूझती, मुक्त यौन से भी नहीं बूझती, क्योंकि मनुष्य का सेक्स होता है दिमाग में और दिमाग का रिश्ता दिल से होता है। उसके लिए दिल में आदर और प्रेम हो, उससे ही दिल का रिश्ता बने तो दिमाग की प्यास बुझती है। पशुवत आचरण या जहां तहां मुंह मारते चलने की आदत किसी की शांति या शक्ति का उत्स नहीं बन पाती। यह बात तो ठीक है, लेकिन अगर आप लड़की लड़कियों को मिलने जुलने या एक दूसरे का अंतर जगत समझने का अवसर ही नहीं देंगे, तो उनमें स्वस्थ प्रेम की आपसदारी पनपेगी कैसे? विवाह के पहले तक विपरीत यौन लोगों से अलग अलग रहने वालों का वैवाहिक जीवन भी अच्छा नहीं होता। वे अंत तक एक दूसरे के लिए हवा ही बने रहते। इसके विपरीत लड़कियों को करीब से जानने समझने वाले लड़के और लड़कों को ठीक से जानने समझने वाली लड़कियां समझदार और संवेदनशील जीवन साथी बनती। कक्षा, खेल का मैदान, पार्क, पिकनिक, नाट्य मंडली, नृत्य संगीत मंडली या दूसरे सांस्कृतिक केंद्र लड़की लड़कियों को पास आने का मौका देते हैं, जिससे संबंधों में सहजता आती है और उनमें भेड़ भेड़िया या आग तिनका वाला रिश्ता कायम हो जाने के आसार काफ़ी कम हो जाते हैं। विश्वास करने से विश्वास का मान रखने का शौर किशोरों में विकसित हो सकता है। पुलिसिंग तो किसी तरह की भी अक्षम्य ही है। संवेदनशील मानवीय संबंधों की पुलिसिंग क्या? आंतरिक विवेक जागृत करना ज़्यादा जरूरी है, जो उन्हें विश्वास में लेकर ही अभिभावक विकसित कर सकती है, या दुनिया के क्लासिक बच्चों को पढ़वा कर, पढ़ते नहीं है तो क्लासिक फिल्में दिखाकर। चरित्र निर्माण का मनोसामाजिक अवलंबन तैयार करना एक महीन काम है, उतना ही महीन और जरूरी काम जितना लतर के लिए बांस की कपच्चियां काट कर जापानी शैली का सुंदर चंदोवा तैयार करना। किसी के लिए मीठी बातें और हल्के स्पर्श का घरौंदा बनाना बुरा है कि कुत्तों की तरह लोगों को धुतकारना? एक तरह का क्रौंच वध ही है पार्क के जोड़ों पर लाठी बरसाना। लेकिन इस प्रसंग पर वाल्मीकि का यह केश करुणा विगलित होने के बदले मुझ पर ताव देती है और बूट फटफटाती पुलिसियों को सही मानती है। जुलुमिया पुलिसिया का सॉफ्ट टारगेट ये नन्हे क्रौंच ही बनते हैं, क्योंकि सही अपराधी पकड़ में नहीं आते। खिसियाने बिल्ली खमा नोचे, कहीं तो ताव दिखाना जरूरी है। बाज को दिखा नहीं सकते तो क्रौंच को ही दिखा लो। बिना यह समझे कि अबोध मन पर यह कितनी बड़ी चोट है कि प्रिय के सामने ही प्रेम के लिए उसे जलील होना पड़े। इतनी सी बात पर इस जुलुमिया पुलिसिया को समझ में नहीं आती कि जिसे अय्याशी कहनी करनी होगी दिन दहाड़े बाग में नहीं आएगा, कोई कमरा ढूंढ ही लेगा कहीं। प्रकृति की छांव प्रेम ही ढूंढता है और प्रेम पर डंडे बरसाना एक तरह की डायरपंथी है, एक नया जलियावाला बाग कांड।